ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 29 मई से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नकली किताबें छापने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस अकादमी के वजीराबाद परिसर में पासिंग आउट परेड में 1308 नवनियुक्त सिपाहियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में बम की धमकियों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि देश भर के 723 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेज को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को, और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी। देश में हर एक टीम जिस एक गाँव में जाएगी वहां 5 से लेकर 10 गाँव के किसान वहां आएंगे।
श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। देश की लगभग आधी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। कृषि मंत्री ने आज नई दिल्ली में देश भर के किसानों के विभिन्न समूहों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पानी देना भारतीय किसानों के साथ अन्याय है।
बगलिहार एक परियोजना है जिसे पाकिस्तान गाद नहीं निकालने दे रहा था, हमें जो मिट्टी जमा हो जाती बांध भर जाते हैं इसी समझौते का बहाना बना के, लेकिन अब सलाल बांध और बगलिहार बांध दोनों से पानी निकाल के हमने गाद निकालने का काम शुरू कर दिया। पाक धारदागिरी करता था, सिंधु जल समझौता है, गाद भी नहीं निकालने देंगे। अब गाद तो क्या, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे। हमारे 4-5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आएगा, सारी संभावनाओं पर विचार करके और कैसे भारत के किसानों के हक में, हित में इस पानी का उपयोग किया जाए उसकी योजना बनाई जाएगी।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपनी टिप्पणियों से सशस्त्र बलों का अपमान करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय के स्पष्ट बयानों के बावजूद देश के सशस्त्र बलों का अपमान करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि सेना और विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने आज संसदीय स्थायी समिति को भारत और पाकिस्तान के संबंध में मौजूदा विदेश नीति के घटनाक्रमों पर जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति को ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में जानकारी दी। किसी शीर्ष सरकारी अधिकारी ने पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद विदेश नीति के घटनाक्रमों पर संसदीय पैनल को पहली बार जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के सशस्त्र बलों के पराक्रम, बहादुरी और वीरता के सम्मान में दिल्ली सहित पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में शहर के क्रॉट प्लेस इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। मुख्यमंत्री के अलावा पश्चिम दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य नेता इस यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में सर्वोच्च बलिदान दिया था।
बम्बई में जन्मे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को जनवरी 1972 में महार रेजिमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला। भारत श्रीलंका समझौते के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की कई टुकड़ियां श्रीलंका भेजी गई थी। मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार को भी ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका भेजा गया था। 25 नवम्बर 1987 को मेजर परमेश्वरन देर रात एक सर्च ऑपरेशन से अपनी टुकड़ी के साथ लौट रहे थे। अचानक उनके दस्ते पर उग्रवादियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। बड़ी सूझबूझ से मेजर परमेश्वरन ने उन्हें पीछे से घेर लिया और साहसपूर्वक उन पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान एक उग्रवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। अपनी गंभीर चोट के बावजूद मेजर परमेश्वरन ने राइफल छीन ली और उस उग्रवादी को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आदेश देना जारी रखा और अपनी टीम को आखिरी सांस तक प्रेरित किया। इस कार्रवाई में 5 उग्रवादी मारे गए और 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर जब्त किए गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की नकली किताबों को छापने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मीडिया से बातचीत में शाहदरा के उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहदरा के मंडोली रोड इलाके में इन किताबों की अवैध बिक्री हो रही है। इस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने छापेमारी की और लगभग 1,70,000 नकली किताबों को जब्त किया, जिसकी कीमत 2,40,00,000 रुपए से अधिक है।
शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन में हमको ये पता चला कि एक पूरा रैकेट है जो NCERT की बुक्स हैं उनको काउंटरफीट करता है और उन फेक बुक्स को फिर मार्केट में उन्हीं NCERT की प्राइस में उनको बेचता है। जब टीम वहां पहुंची तो उन लोगों को 27 ऐसी किताबें मिली जो नकली थी। जिस वक्त ये रेड हमारी टीम ने गई, NCERT की टीम हमारे साथ थी, उन्होंने ये कन्फर्म किया कि ये किताबें नकली हैं।
दिल्ली पुलिस अकादमी के वजीराबाद परिसर में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अकादमी के अनुसार कार्यकारी कैडर बैच संख्या 124 के 1,308 नवनियुक्त पुरुष सिपाहियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के अवसर पर पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। अब ये कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। अकादमी के अनुसार सिपाहियों को नए आपराधिक कानूनों और साइबर अपराध से निपटने के उपायों में प्रशिक्षित किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जनसुनवाई में जनता की समस्याओं और सुझावों के आधार पर नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कर जनता को राहत प्रदान करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली के विद्यालयों में बम की धमकियों के प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस SOP में CCTV कैमरे लगाने, निकासी योजना बनाने, नियमित सुरक्षा ऑडिट और मॉक ड्रिल जैसे उपाय शामिल हैं।
शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किए गए इस प्रोटोकॉल में रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए स्कूलों को अब अपने संबंधित जिला अधिकारियों को मासिक सुरक्षा जांच प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। SOP में फर्जी धमकियों के खिलाफ सख्त चेतावनी भी शामिल है, जिसमें झूठे अलार्म के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने एक बयान में बताया है कि SOP का मसौदा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद तैयार किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुरूप है। बयान में कहा गया है कि यह SOP तत्काल प्रभाव से राजधानी के सभी स्कूलों पर लागू होगा, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थान शामिल हैं। इस SOP के तहत दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन अख्तर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंग भवन सभागार में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ और भारतीय भाषाओं में प्रवेशिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये ग्रीष्मकालीन शिविर छात्रों को उनकी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को सिखाने में भी मदद करेगा। श्री प्रधान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसने देश के शिक्षकों का मान बढ़ाया है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नई E0 FIR पहल शुरू की है। दिल्ली में अग्रणी योजना के रूप में शुरू की गई ये नई प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या 1930 पर दर्ज 10 लाख रुपए से अधिक राशि के साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से FIR में बदल देगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस नई प्रणाली से साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई और जांच संभव होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल का शुभारंभ किया। वर्तमान कमियां दूर करने और उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर बनाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपर न्यायाधीशों सहित उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पाने का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने आज कहा कि न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज झारखंड के चुनाव पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम में 402 पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में चल रहे इस कार्यक्रम में झारखंड के चुनाव पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि कार्यक्रम में संवाद सत्र, घर घर जाकर सर्वेक्षण, केस स्टडी और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिभागी वोटर हेल्पलाइन ऐप और IT उपकरणों का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। चुनाव पदाधिकारियों को मॉक पोल के संचालन के साथ साथ EVM और VVPAT के तकनीकी प्रदर्शन से भी अवगत करवाया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान प्रतिभागियों की कड़ी मेहनत और उनके कार्य की सराहना की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि पिछले 3 महीने में देश भर से 3,000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन अख्तर के साथ रईसुद्दीन रिहान, दिल्ली।
दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जून की वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए 2 जून को मतदान होगा। निगम सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आज एक नोटिस जारी कर बताया कि इसी दिन हर वार्ड समिति से स्थायी समिति के 12 सदस्यों का चुनाव भी किया जाएगा। इन चुनावों के लिए इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 122वां एपिसोड होगा। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से भेज सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे TB की रोकथाम और इलाज विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से TB के कारणों, लक्षणों, शुरुआती पहचान और उपचार के बारे में टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0112342100 और 0112331444। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 29 मई से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नकली किताबें छापने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस अकादमी के वजीराबाद परिसर में पासिंग आउट परेड में 1308 नवनियुक्त सिपाहियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में बम की धमकियों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।